समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई और सुहावनी सुबह में आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे लेकर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं
अनीता आनंद। नमस्कार देवेंद्र, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein over the next half an hour we shall bring you the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this date, that is the 19th of October. So let's begin with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi will launch the Karma Yogi Saptah National Learning Week in New Delhi today. During the week, each Karma Yogi will commit to achieving a target of at least 4 hours of competency-linked learning. Our correspondent reports that the National Learning Week will be dedicated to learning through various forms of engagement by individual participants and ministries, departments and organizations. The mission Karma Yogi was launched in September 2020, aimed to promote citizen-centric governance with the help of a robust digital ecosystem. It is a competency-driven capacity-building and human resource management program designed for the civil servants. The National Learning Week will provide fresh impetus towards individual and organizational capacity development. During the week, each Karma Yogi will commit to achieving a target of at least 4 hours of competency-linked learning. The participants need to complete the courses available on iGOT platform. The courses are available in webinar format designed by professionals. During the week, eminent speakers will deliver lectures and help the Karma Yogi to work towards citizen-centric delivery in an effective manner.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी अफ्रीका यात्रा के तीसरे चरण में कल मलावी के राष्ट्रपति लाजारस चाकवेरा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। दोनों देशों ने खेल, युवा कार्यक्रम, दवा और कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के लिए 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सद्भावना के रूप में भारत मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल और भाभाट्रॉन कैंसर उपचार मशीन दे रहा है। राष्ट्रपति ने मलावी में एक स्थायी कृत्रिम अंग प्रतिस्थापन केंद्र खोलने की भी घोषणा की है।
वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ विल बी ऑन अ डे लॉन्ग विजिट टू सीकर इन राजस्थान टुडे। ड्यूरिंग द विजिट द वाइस प्रेसिडेंट विल प्रिसाइड एज चीफ गेस्ट एट द सिल्वर जुबली एनुअल फंक्शन ऑफ सोबसरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन सीकर।
जी, कोयला मंत्रालय को 67 कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के लिए 44 ऑफलाइन बोलियां प्राप्त हुई हैं। इनमें लघु और मध्यम श्रेणी की कंपनियां भी शामिल हैं। कल बोली प्रस्तुत करने का आखिरी दिन था। सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलियों को सोमवार 21 अक्टूबर को खोला जाएगा।
यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान विल इनॉग्रेट अ डे लॉन्ग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर द रबी कैंपेन इन न्यू दिल्ली टुडे। Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Ramnath Thakur, will also be present at the event. The conference aims to foster collaboration and innovation in agricultural practices, ensuring a successful Rabi campaign for all stakeholders involved. It will bring together officials from various ministries, states, union territories and organizations to discuss key initiatives and strategies for the upcoming Rabi season.
भारत और सऊदी अरब ने कल नई दिल्ली में रणनीतिक भागीदारी परिषद की समितियों के काम की समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने किया, जबकि सऊदी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राजनीतिक मामलों के उपमंत्री डॉ सऊद अल सती ने किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय मामलों, आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की है।
A UN report has stated that in Bangladesh, around 4.17 crore people are living in extreme poverty, with 6.5% of the population facing severely dire conditions. The report titled Global Multidimensional Poverty Index 2024, Poverty Amid Conflict, was published jointly by the United Nations Development Programme, UNDP, and Oxford Poverty and Human Development Initiative of the Oxford University recently and paints a grim picture of Bangladesh's poverty crisis. The report identifies poor living standards as the largest contributor to Bangladesh's poverty rate, accounting for 45.1% of the poverty index. Globally, the report reveals that 110 crore people are living in extreme poverty, with nearly half residing in conflict-affected regions. A staggering 83% of those living in extreme poverty are found in African and South Asian countries, further highlighting the regional challenges, comments United News of Bangladesh UNB based on the reports. In South Asia, an alarming 27.2 crore people live in households where at least one member suffers from malnutrition, underscoring the severe health and nutritional issues that compound poverty in the region.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि विकसित देशों की तुलना में बड़ा और तेज वृद्धि दर वाला होने के कारण विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देशों का योगदान बहुत अधिक है। कल मॉस्को में ब्रिक्स व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के देश वास्तविक अर्थों में वैश्विक आर्थिक वृद्धि के वाहक हैं। श्री पुतिन ने कहा कि आने वाले समय में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य योगदान ब्रिक्स देशों का ही होगा। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। अब इस समूह में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को भी शामिल किया गया है। अगले सप्ताह रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। इस सम्मेलन में सहभागिता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर मंगलवार को रूस जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति ने राजधानी मॉस्को में पत्रकारों से कहा कि ब्रिक्स कभी भी किसी के खिलाफ नहीं रहा है। श्री पुतिन ने इस बात को सभी के सामने रखने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि ब्रिक्स पश्चिम विरोधी नहीं बल्कि एक गैर पश्चिमी संगठन है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश विश्व राजनीति और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ संघर्ष को रूस शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है। उन्होंने युद्ध में यूक्रेन का साथ देने के लिए अमरीका और पश्चिमी देशों की आलोचना की। उन्होंने मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी की चिंता की सराहना की। श्री पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी चर्चाओं के दौरान इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि भारतीय फिल्में रूस में बहुत लोकप्रिय हैं और रूस में भारतीय फिल्मों का वितरण बढ़ाने पर जल्द ही बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि रूस में भारतीय फिल्मों को समर्पित एक विशेष चैनल है। श्री पुतिन ने दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने औषधि निर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया।
Israeli military continued its push into Lebanon and called up another brigade for combat. Israel Defense Forces IDF has urged residents of 23 listed villages and towns to flee to the north of the Avali River. IDF warned that anyone who is near armed group Hezbollah's elements, facilities or weapons is putting his or her life in danger. Meanwhile, Israeli troops continued their offensive in southern Lebanon. According to the IDF, 4 militants were killed in a combined airstrike and a ground attack aimed at destroying a central underground command center belonging to Hezbollah. Israeli army has been conducting intensive airstrikes in Lebanon amid an escalation in conflict with Hezbollah last month. The confrontation between the Israeli army and Hezbollah started in October last year following terror attack in Israel by Palestinian armed group Hamas.
महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया है। कल रात शारजाह में खेले गए सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड के 128 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 8 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कल खेला जाएगा। फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा।
In cricket, India will resume their second innings at the overnight score of 231/3 against New Zealand on day 4 of the first test in Bengaluru this morning. Sarfaraz Khan unbeaten on 70 runs was at the crease at stumps on day 3 yesterday. Virat Kohli scored a stable 70 but lost his wicket to Glenn Phillips on the last ball of the innings. The hosts are currently trailing by 125 runs against the visitors. For New Zealand, Ejaz Patel took 2 wickets while Glenn Phillips took 1. Earlier in the day, the visitors posted a huge total of 402 runs in their first innings. India are currently at the top of the World Test Championship standings while New Zealand is in the 6th place.
तो देश और दुनिया की बड़ी खबरें रही ये, और इसके बाद अब हम रुख करते हैं महानगरों का, और चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से क्या समाचार हैं आइए जानते हैं अनीता से।
In Chennai, a state agency is taking action to protect the local ecosystem by culling invasive tilapia fish in the Adyar Creek. Originally from Africa, tilapia have been threatening native species by competing for resources and disturbing the balance of the water habitat. Tilapia introduced to Tamil Nadu in the 1950s as a cheap protein source quickly spread across the state's freshwater bodies due to its ability to thrive in polluted low oxygen environments. Tilapias reproduce rapidly through mouth brooding, while fertilized eggs are carried in the mouth until hatching. This combined with feeding on larvae of local fish and territorial behavior allows them to displace native species. As this became a citywide issue, Chennai River Restoration Trust launched a targeted culling operation at the 358-acre Adyar Creek and surrounding areas, removing adult tilapia using nets. Before formulating a policy, a comprehensive survey of the native fish species is crucial to educate future generations. Historically, local fishermen's knowledge was relied upon, but now tilapia is often mistaken for native species such as millets. Dr. Rajan Ravichandran, director at MIOT Institute of Nephrology, and his team have been performing cross-blood group renal transplantations to ensure the judicious use of organs and prevent delays in surgeries for patients for nearly 14 years. 3 months ago, when they had to perform a transplant for a patient with the rare Bombay O blood group, on Thursday, the team announced that the 30-year-old chronic kidney failure patient who has been on dialysis for a year had successfully undergone a kidney transplant. His mother, who has the B-positive blood group, was the donor. The International Center for Antimicrobial Resistance Solutions has partnered with the Bengaluru-based Center for Cellular and Molecular Platforms to tackle the threat of antimicrobial resistance. Over the next 5 years, the organizations will synergize efforts to develop and integrate innovative solutions against antimicrobial resistance, or AMR in short. The International Center for AMR will fund the research and provide technical expertise to realize the goals of India's National Action Plan on AMR across One Health domain. One Health is an approach that recognizes human health at par with the health of animals, but the belief that both are closely connected in the shared environment. Such solutions found effective after trials will be transferred to other low and middle income countries. Karnataka Minister for Infrastructure and Development M.B. Patil has informed that the location of Bengaluru's second airport will be finalized after meeting next week. He was speaking to media persons in Bengaluru yesterday after a meeting with Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar and IT/BT Minister Priyank Kharge. The minister informed that the five sites have been identified, and one among them, namely the Baspet, Neelmangala, Bidari and Horahalli, will be finalized in the meeting to be held next week, saying that political interests will not influence the decision on location. M.B. Patil said that the officials have been instructed to submit a feasibility report on all these locations. Telangana State Government has issued orders appointing vice-chancellors for 9 state universities. This ended the prolonged delays and the aid of senior bureaucrats as in charge VCs. Professor Kumar Molugram, who has been appointed as vice-chancellor of Osmania University, he is senior professor in the university with an academic and research career in civil engineering that spans 29 years. Professor Aldaz Janaya is appointed as vice-chancellor for Professor Jayashankar Telangana State Agriculture University. Professor Raji Reddy appointed as Vice Chancellor for Sri Konda Lakshman Telangana Horticultural University is an expert in agro-meteorology. The other VCs appointed included Professor Pratap Reddy for Kakatiya University, Warangal, Professor G. N. Srinivas for Palamuru University, Mehboob Nagar, Professor Umesh Kumar for Satvahana University, Karim Nagar, Professor Nityanand Rao for Telugu University, Hyderabad, Professor Altaf Hussain for Mahatma Gandhi University, Nalgonda, and Professor Yadagiri Rao for Telangana University, Nizamabad. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Divendra Tripathi.
जी, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कल दिल्ली हाट में आयोजित विशेष खादी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार भी उपस्थित थे। श्री मांझी ने सभी देशवासियों से खादी और लोकल उत्पाद अधिक से अधिक खरीदने की अपील की। उन्होंने दिल्ली वासियों से आग्रह किया कि त्योहारों की खरीदारी के लिए इस खादी प्रदर्शनी में आएं और स्वदेशी खादी उत्पादों की खरीदारी कर वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा बने। प्रदर्शनी का आयोजन इस महीने की 31 तारीख तक किया जाएगा। सर्दी के मौसम से पहले दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक कल 285 पर पहुंच गया। खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल सभी संबंधित अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 13 हॉटस्पॉट हैं जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 को पार कर गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी में धूल की समस्या को कम करने के लिए सड़कों के किनारों और रास्तों को पक्का करने के साथ साथ खुले क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम करने पर बल दिया था। त्योहारों को देखते हुए प्याज की ऊंची कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के नासिक से कांदा रेल को रवाना किया गया है। ये रेल 1600 मीट्रिक टन प्याज लेकर कल दिल्ली पहुंचेगी। इस प्याज की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिक्री की जाएगी, जिससे प्याज के दामों में स्थिरता आएगी। और महाराष्ट्र का रुख करें, मुंबई का रुख करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। एनसीपी नेता दीपक सालुंखे और पूर्व बीजेपी एमएलसी राजन तेली शुक्रवार को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे में शामिल हो गए। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि बीजेपी नेता सुरेश बनकर भी शिवसेना में शामिल हुए हैं। वरिष्ठ अम्बेडकरवादी नेता नाना बागुल और सिंधी नेता नंदलाल बाधवा शुक्रवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले गुट में शामिल हुए। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पार्टी विरोधी रुख अपनाने और पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के आरोप में विधायक सतीश चव्हाण को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक कुल 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने रायगढ़ जिले के पनवेल और करजत में छापेमारी की, जिसके परिणाम स्वरूप 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये लोग शूटरों को हथियार सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच मुंबई ट्रैफिक पुलिस को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग करने वाला एक धमकी भरा संदेश मिला है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। खान को पहले ही लॉरेंस विश्नोई गिरोह से जान से मारने की धमकी मिली थी। कोलकाता का रुख करते हैं, जहां बंगाल राइस मिल्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार के साथ धान खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल मालिक ने शुक्रवार को कोलकाता में मीडिया को बताया कि राज्य सरकार धान की खरीद के लिए बैंक गारंटी के बारे में उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। एसोसिएशन चावल मिलों के लिए 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी की मांग कर रहा है। इस साथ ही चावल मिल मालिक धान से चावल बनाने के लिए अन्य राज्यों की तरह अधिक कीमत की मांग कर रहे हैं। मिल मालिकों ने विभिन्न जिलों में चावल की आपूर्ति के लिए अधिक परिवहन शुल्क की भी मांग की है। और अब महानगरों के मौसम की भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा, लेकिन जैसा कि खबरों में आपने सुना कि प्रदूषण बढ़ने लगा है, तो हवा थोड़ी धीमी होगी, जिसके कारण आज भी प्रदूषण रहेगा, लेकिन कल की तुलना में थोड़ी राहत रहेगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश नहीं होगी, आसमान साफ रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 33 डिग्री रहने की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और तापमान 34 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है।
एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 24 डिग्री and the maximum will be around 30 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees and the maximum will be around 29 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
जी, और अब मौसम के बाद हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जो है हिस्ट्री का यानी इतिहास का, आज के दिन इतिहास में कौन सी घटनाएं ऐसी महत्वपूर्ण रही जो दर्ज है, इतिहास का हिस्सा बनी है, आइए जानते हैं।
या इन द ईयर 1774 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड केम टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट इन इंडिया एंड इन द ईयर 1875 द फर्स्ट सेक्शन फ्रॉम हाथरस टू मथुरा कंटोनमेंट वॉज ओपन्ड टू ट्रैफिक।
जी, और 1889 में फ्रांसीसी नेता नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस की राजधानी से अपनी सेना हटा ली थी। 1933 में आज ही के दिन यानी 19 अक्टूबर के दिन ही जर्मनी मित्र राष्ट्रों की संधि से बाहर आया था, और वो वर्ष 1950 का आज ही का दिन था जब मदर टेरेसा ने भारत में मिशनरी ऑफ चैरिटीज की स्थापना की थी। 1952 में श्री रामुलु पोटी ने पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन शुरू किया था।
In the year 1967, Dr. C.V. Raman elucidated his new theory on wave motion in respect to vision and dim light. And in the year 1970, first Indian made MiG-21 was handed over to Air Force. Privy purses and privileges of former Indian rulers was abolished. In the year 1983, Professor Subramaniam Chandrasekhar shares the 1983 Nobel Prize for Physics with fellow American Professor William Fowler. In the year 1990, the Government of India under an ordinance put forward a three-point formula for the Ayodhya issue. One, to acquire the land. Two, other land may be given for building temple except the disputed one. And three, the issue may be referred to Supreme Court for speedy solution. But the final judgment in the Ayodhya dispute was declared by the Supreme Court of India on 9th of November 2019, and in the Pran Pratishtha ceremony of the idol at Ayodhya's Ram Temple was held on 22nd of January this year, that is 2024, after several rituals.
जी, और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली बंगाल की वीरांगनाओं में से एक वीरांगना मातंगिनी हजारा को। हम उन्हें नमन करते हैं। भारतीय इतिहास में उनका उल्लेख अदम्य शौर्य और साहस के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेज सेना आंदोलनकारियों को जब नहीं रोक पाई और उसने आगे बढ़ने से आंदोलनकारियों को रुकने को कहा, वीरांगना मातंगिनी हजारा ने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर अंग्रेज सेना की इस चुनौती को, चेतावनी को नकार दिया और आगे बढ़ गई। इसी समय उन पर गोलियां दागी गईं और इस वीरांगना ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। मातंगिनी हजारा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। वे एक गरीब किसान की बेटी थी। बहुत छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया था। दुर्भाग्य से मातंगिनी जब मात्र 18 वर्ष की थी तभी विधवा हो गई। अपने पति के मकान के पास एक कुटिया बनाकर रहने लगी। 1930 का वो दिन था जब आंदोलन में गांव के कुछ युवकों ने भाग लिया तो मातंगिनी ने पहली बार स्वतंत्रता की चर्चा सुनी। 1932 में उनके गांव में एक जुलूस निकला, उसमें कोई भी महिला नहीं थी, लेकिन मातंगिनी जुलूस में सम्मिलित हुई। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया, इसमें अनेकों गिरफ्तार हुए, लेकिन मातंगिनी को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो वृद्ध थी। उन्होंने मौका मिलते ही तामलुक की कचहरी पर चुपचाप जाकर तिरंगा ध्वज फहरा दिया। इस पर उन्हें इतनी मार पड़ी कि मुंह से खून निकलने लगा। सन 1933 में गवर्नर को काला झंडा दिखाने पर उन्हें 6 महीने की सजा भी भोगनी पड़ी थी। आज ही पुण्यतिथि है निर्मला देशपांडे की। वो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने अपना जीवन सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने, महिलाओं, आदिवासियों और वंचितों की सेवा में अर्पण कर दिया। उन्होंने अनेक उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, विनोबा भावे की जीवनी भी लिखी। निर्मला देशपांडे भी जीवन पर्यंत सर्वोदय आश्रम टडियावां से जुड़ी रहीं। उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए दिल्ली और मुंबई में कामगार महिलाओं के लिए खासतौर पर आवास गृहों की स्थापना की। सामाजिक जीवन में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक तथा दार्शनिक पांडुरंग शास्त्री अठावले की भी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने समाज में स्वाध्याय के माध्यम से आत्म चेतना जगाने का आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया और समाज सुधार का आंदोलन भी चलाया। अठावले ने युक्तिपूर्वक वेदों, उपनिषदों तथा हिंदू संस्कृति की आध्यात्मिक शक्ति को फिर से जागृत किया और आधुनिक भारत के सामाजिक रूपांतरण में उस ज्ञान तथा विवेक का प्रयोग संभव बनाया। दादा पांडुरंग को भारत सरकार ने वर्ष 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
स्वाध्याय ऑफ पांडुरंग अठावले इज अ सेल्फ स्टडी प्रोसेस बेस्ड ऑन भगवद गीता विच वॉज स्प्रेड अक्रॉस नियरली 100,000 विलेजेस इन इंडिया, अमेरिकाज, यूरोप, मिडल ईस्ट, ओशिनिया एंड अदर एशियन कंट्रीज विद 5 million adherents. Noted for his discourses on the Bhagavad Gita, the Vedas and the Upanishads, Dadaji is also known for his selfless work and brilliant knowledge in scriptures. Today is also the death anniversary of the English writer Jonathan Swift, the common sobriquet being Dean Swift. Swift is remembered for works such as A Tale of Tub, released in 1704, An Argument Against Abolishing Christianity, Gulliver's Travels, and A Modest Proposal. He is regarded by the Encyclopedia Britannica as the foremost prose satirist in the English language. He originally published all of his works under the pseudonyms including Lemuel Gulliver, Isaac Bickerstaff, M.B. Drepier, or anonymously. He was a master of two styles of satire, the Horatian and Juvenalian styles. His deadpan ironic writing style, particularly in A Modest Proposal, has led to such satire being subsequently termed as Swiftian. He was a prolific writer and the collection of his prose works comprises 14 volumes.
भारत के सुप्रसिद्ध खगोल भौतिक शास्त्री और भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी हम आज याद कर रहे हैं, जिनका जिक्र अनिता आपने आज के इतिहास में भी किया था। नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के भतीजे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की, बाद में वो अमेरिका चले गए जहां उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र और सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला। और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में याद करते हुए लिखते हैं कि प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किस तरह कैम्ब्रिज में ग्रेजुएशन के दौरान 1930 में ही चंद्रशेखर लिमिट की खोज की थी, लेकिन इस खोज को मान्यता मिलने और नोबेल पुरस्कार मिलने के लिए उन्हें 50 साल का इंतजार करना पड़ा। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर एस चंद्रशेखर को एक अन्य अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर विलियम फाउलर के साथ 1983 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला।
And today is the birthday of Ajay Singh Deol, popularly known as Sunny Deol, the Indian actor, film director, producer, politician and former member of Parliament in Lok Sabha.
Chadda, tune kabhi bachcho ko bijli ki tar se patang utarte dekha hai?
Kya?
Kuch tare aisi hoti hain jisme se uljhi hui patang bachche bhi utar late hain. Ye aur baat hai. दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा।
रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, हैज वर्क्ड इन मोर देन 90 फिल्म्स इन अ करियर स्पैनिंग ओवर 4 decades. And is particularly known for his angry action hero persona. We played a dialogue from his film Damini. Deol has won several awards also, including 2 National Film Awards and 2 Filmfare Awards. Deol has his biggest commercial successes in the period action films Border, Gadar Ek Prem Katha. The latter was the highest grossing Hindi film to that point. He subsequently starred with his father and younger brother Bobby Deol also in the film Apne. I am playing a snippet of a song from the film Kadar.
Ikko ghar aaja pardesi, to teri meri ik jindri. Ikko ghar aaja pardesi, to teri meri ik jindri.
और आज ही पुण्यतिथि है हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध संगीतकार आरसी बोराल यानी रायचंद्र बोराल की। उन्हें भारतीय सिनेमा में पार्श्व गायन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है और आज ही और श्रोताओं अब समय है कि हम आपसे ले लें इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news at 8:15. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.